मसीह यीशु के बुलाए हुए प्यारे भाई और बहनों, जैसे जैसे हमारा भाई अजय ने आपके सामने कहा, मैं भी कहना मानते हैं कि हम पहला आपसे माफ़ी मांगना है क्योंकि जो समय हम लोग आपको बताया वो समय हम रख नहीं पाया, लेकिन पूरा कोशिश की, हम बलहीन तो आपसे माफ़ी मांगते हैं, फिर भी समझते हैं कि परमेश्वर ये अवसर हमारे को ले एक आशीर्वादित अवसर बदलेंगे हमारे लिए। जो आज जो सुनने वाला सच्चाई है, सचमुच आपका दिल को बहुत प्रसन्न करेंगे। तो जैसे जैसे पिछले हफ्ते चटा पाठ सुनते हुए आपने सुना है विश्वास के बारे में, और विश्वास के बारे में सुनते सुनते आपने सुना एक और विश्वास, एक खास विश्वास जो परमेश्वर के वचन में है, जिसका नाम है अति पवित्र विश्वास। सचमुच मैं भी जब ये सच्चाई पहला मैंने सुन लिया, ये विश्वास के बारे में हमने कभी सुना नहीं पहले। हम मसीही थे, हम बाइबल पढ़ते थे, लेकिन ये विश्वास के बारे में हमने सुना नहीं। ये बहुत ही खास विश्वास है, ये परमेश्वर के वचन के आधारित विश्वास है, अति पवित्र विश्वास। क्यों परमेश्वर वो अति पवित्र विश्वास नाम देता है? क्योंकि परमेश्वर जानता है इस दुनिया में बहुत सारे विश्वास हैं और बहुत सारे पवित्र विश्वास भी है कि नहीं? अगर हमारे सिख लोगों से पूछो, उनके विश्वास पवित्र विश्वास बोलते हैं। मुसलमान से पूछो, वो बोलता नहीं, हमारा विश्वास पवित्र विश्वास है। तो इससे बढ़ के अति लगाना है ना, तो ये अति पवित्र विश्वास परमेश्वर के वचनों के आधारित है ये विश्वास। तो पिछले बार और छठा पाठ में आपने सुना है ये विश्वास के बारे में, ये विश्वास है परमेश्वर के वचन के आधारित। पिछले क्लास के अंत में आपने सुना है कि आजकल ज्यादातर मुख्यतः महत्व बाइबल पढ़ने को नहीं देता है। पूरे दिन का प्रार्थना होता है, रात पूरे रात का प्रार्थना होता है, उपवास का प्रार्थना रहता है, लेकिन उपवास का बाइबल स्टडी नहीं है, पूरा दिन का बाइबल स्टडी नहीं है, पूरा रात का बाइबल स्टडी नहीं है, लेकिन महत्व देता है प्रार्थना के लिए, बांटते प्रार्थना के लिए, लेकिन बाइबल स्टडी बोले तो आता हूँ बांटता नहीं है। तो ये सब क्या, ये सब उल्टा पुल्टा हो गया है सारे बातें। तो ये किसने किया ये बात, तो आज हम देख लेंगे कि ये सब है शैतानी ढोंग जो चल रहा है, जो परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ना, लेकिन परमेश्वर के पास आना है प्रार्थना करने के लिए, मांगने के लिए। जब तक हम परमेश्वर के बारे में जानता नहीं है, तरीका भी नहीं जानता है कि कैसे प्रार्थना करें और किसके लिए प्रार्थना करें और कौन से चीजें के लिए प्रार्थना करना, कौन सा मना है नहीं करना, जब तक वो सब नहीं जानता है, हम कैसे प्रार्थना कर सकता है? और परमेश्वर के बारे में सही ज्ञान हमारे पास नहीं रहा तो हम कैसे सही और सही तरीके का प्रार्थना हम कैसे कर सकते हैं? तो परमेश्वर के वचन के पढ़ाई सबसे अहम बात है, ये है अति पवित्र विश्वास है। ये अति पवित्र विश्वास को तोड़ने के लिए ये था शैतान का चाल, शैतान का काम यही था। तो हम देखते हैं शुरुआत में, मतलब ये युग की शुरुआत, ये युग का नाम है सुसमाचार का युग, प्रभु यीशु के पहले आगमन से आज तक ये युग चलते आ रहा है। इस युग की शुरुआत में शैतान ने क्या क्या चाल किया, क्या क्या कोशिश किया इस अति पवित्र विश्वास को तोड़ने के लिए, नाश करने के लिए, आज बहुत सारे वचनों से देखेंगे। कोई बत्ती लगा सकते हैं इधर? दूसरा कुरिन्थियों 11:3 2 Corinthians 11:3 2 Corinthians 11:3
परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए।
तो यहाँ पौलुस ये कुरिंथियों कलीसिया को चिट्ठी लिखते वक्त बोला कि मैं डरता हूं कि जैसे जैसे हवा को धोखा खाया कि तुम भी उसी तरह का धोखा शैतान से खाएंगे। तो ये क्यों पौलुस ने ऐसा बात किया, क्यों पौलुस ने कलीसिया को अव्वा के समान या अव्वा को उदाहरण रख के क्यों बात की, इसके कोई ना कोई कारण होना चाहिए ना। तो आज हम देखेंगे ये कारण क्या है कि बात सच्चाई जो हम वचन में पढ़ना है, जो अभी तक 6 पाठ हो गया है यहाँ डेरा बाबा नानक में, ये बड़ा सच्चाई क्या है कि ये सारा मनुष्य जाति शुरू हुआ एक मनुष्य और एक औरत, आदम और हव्वा। और आदम जो परमेश्वर ने रचाया परिपूर्ण रचाया, और आदम में पाप नहीं था, और आदम मरने के लिए परमेश्वर नहीं रचाया। तो बाद में हमने देखा कि कैसे आदम पाप में गिरा, और गिरने के बाद पाप का दंड मौत उसके ऊपर आया, और उसके बाद आदम और हव्वा जब बाग के बाहर आया और खानदान बना और बढ़ने लगा, उसके बाद उनके सारे बच्चे उसी स्थिति में पैदा हुआ, पाप में मौत के दंड के नीचे। ये बात तो वचन में पढ़ लेंगे अभी, रोमियो 5:12।
इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया।
समझ गया कि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और उस एक पाप के द्वारा मौत आया, और इस पाप और मौत जो वो एक मनुष्य के ऊपर जो आया सभी पर फैला, इसलिए कि वो एक मनुष्य हम सारे का बाप है, हम सारे का बाप है। तो हमारे को मिल गया है वो पाप और मौत, तो वो रहा हमारा बाप का कहानी, पहला आदम। तो सारे खानदान को ये पाप और ये मौत दिया, लेकिन परमेश्वर की कृपा से एक दूसरा आदम आया, और ये दूसरा आदम के जरिए से हमको छुटकारा मिला, हमको उद्धार मिला। ये बात तो हम जानते हैं, हमने पढ़ लिया है दूसरा और तीसरा पाठ में क्रूस के रहस्य। अभी पढ़ेंगे दूसरा आदम के बारे में, पहला कुरिंथियों 15:45। पहला कुरिंथियों 15:45।
जो लिखा होया भी है, जो पहला आदम जिंदी जान होया, केकला आदम जीवन दाता आत्मा होया।
तो दूसरा आदम है ना, पहला आदम था और दूसरा आदम है। तो दूसरा आदम अगर रहा तो दूसरा हव्वा भी रहना ना, है कि नहीं। पहला आदम था और पहला आदम के लिए एक पहला हव्वा था, इन दोनों जोड़ी के जरिए से आया था पूरा दुनिया, लेकिन पाप में मौत में, पाप और मौत होते हुए। लेकिन अभी दूसरा आदम आ गया, लेकिन दूसरा आदम अकेले नहीं रहेंगे, दूसरा आदम का शादी होने वाला है, और दूसरा आदम के लिए एक दुल्हन का तलाश होने हो रहा है, तो दूसरा हव्वा होने वाला है। तो पौलुस बोलता है कलीसिया दूसरा हव्वा, और जैसे जैसे शैतान ने पहला हव्वा को धोखा किया उसी तरह कोशिश अभी कर रहा है दूसरा हव्वा भी धोखा में लेने के लिए। तो ये बात तो कैसे शैतान कर रहा है, हर किस्म के गलत शिक्षा में, हर के किस्म के गलत उपदेश में। तो कैसे कैसे गलत शिक्षा शैतान लाया, देख लेंगे शुरुआत से। उन दिनों में पहले सदी के बात मैं कर रहा हूं, जब छेले जिंदा था, तो उन दिनों में कैसे कैसे किस्म के गलत उपदेश शैतान लाने की कोशिश किया। गलातियों तीसरा अध्याय पहला वचन, गलातियों 3:1।
हे निर्बुद्धि गलातियों,
निर्बुद्धि मतलब बेवकूफ। पौलुस इतना शब्द इस्तेमाल करने के लिए सोच लो कि पौलुस के अंदर कितना कष्ट आ गया होगा कि ऐसे बातों को इस्तेमाल करने के लिए। निर्बुद्ध गलातियों किस लिए पढ़ लो,
किसने तुम्हें मोह लिया है और तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया।
तो यहां न्याय की बात कर रहा है, कानून। कानून परमेश्वर दिया था यहूदियों के लिए, और इन यहूदियों जब तक जिंदा रहा और जब तक नहीं मारा वो कानून रखना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु जब आया, प्रभु यीशु ने बोला आओ मेरे पास, जिनके पास बोझ है। वो बोझ क्या था? कानून। और क्या बोला? आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करेंगे। तो एक एक यहूदी जो प्रभु यीशु के पास आते थे, प्रभु यीशु उनको एक मौका दिया कानून से छुटकारा होने के लिए। और वो कहते हैं कैसे कानून, जब तक एक यहूदी जिंदा रहते हैं वो तो कानून के नीचे ही होना चाहिए। तो एक यहूदी प्रभु यीशु के पास जब आते थे उनको कैसे आजाद होते थे कानून से? एक ही रास्ता प्रभु दिखाया मरने के लिए। ये आप सोच रहे हैं तो वो लोग कैसे मारा, मर के कैसे मसीह बना? ये मरना जो है ना, हमारे लिए जो मरना, ये बात हम समझना है। असली में हमारा बुलावा जो है मरने के लिए है। कोलोसियों में पढ़ लो, कोलोसियों 3:3 क्या दिया है? कोलोसियों 3:3
क्योंकि तुम तो मर गए।
देखो, तुम तो मरने वाला है नहीं बोला, क्या बोला? तुम तो मर गए, मतलब कोलोसियों कलीसिया के लिए लिखे हुए खत में पौलुस बोलते हैं तुम तो मर गए हैं और
तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ
है। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है, अभी आप नहीं समझेंगे, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां क्लास में समझेंगे कि ये मसीह के अंदर मरने का मतलब क्या है। उसमें है सारा रहस्य, उसमें है दुल्हन का चुनाव। वो सब लगता है परमेश्वर को चाहते हैं आपको ये बात सुनने के लिए, इसलिए हम इतने दूर से आ रहे हैं। हम ना आप हमारे को जानते हैं ना मैं तुम्हारे को जानता है, फिर भी परमेश्वर भेज रहा है। ये सब परमेश्वर का काम है, प्रभु ही कर रहा है ये बात। तो देखते हैं यहूदियों के लिए एक ही रास्ता था कानून से रिहा होने के लिए, और वो मौत का रास्ता। तो ये मसीह के बुलावा में हम मरने के लिए प्रभु बुलाते हैं। तो इस तरीके से यहूदियों कानून से छुटकारा हुआ। लेकिन शैतान का चाल क्या था शुरुआत के कलीसिया में, उन लोगों को उलझन में लाने के लिए कि आप मसीह बन सकता है लेकिन आप कानून रखना अवश्य है। तो ये उलझन लाया उन लोगों के बीच में। तो ये उलझन में बहुत सारे यहूदियों फंस गया, और फंसने में पौलुस को बहुत बहुत संज्ञ हो गया कि तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे ये बात। तो ये एक गलत उपदेश जो हम देख रहे हैं। एक और गलत उपदेश हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 15वां अध्याय 1वां वचन। प्रेरितों के काम 15वां अध्याय 1वां वचन।
फिर कुछ लोग यहूदियों से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते।
देखो जो ये यहूदी का रिवाज था, तो ये यहूदी का रिवाज बोलते हैं तुम यहां भी रखना है तो इधर से आप छुटकारा नहीं है, वही रिवाज रखना है। तो ये सारा सवालात बहुत गंभीर सवाल थे शुरुआत के कलीसिया में, बहुत सारे उलझन पहला इस इन सारे मामले के ऊपर। तो ये है थोड़े उदाहरण कि शैतान ने शुरुआत के कलीसिया में कैसे कैसे गलत उपदेश लाया। एक और गलत उपदेश लाया जो हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 15:12। पहला कुरिन्थियों 15:12। क्या बोलने लगा? क्या बोलने लगा? पुनर्तानी नहीं है बोलने लगा। जब ऐसा बोलने लगा पौलुस बोल रहा है, तुम बोल रहे पुनर्तानी नहीं है। अगर पुनर्तानी नहीं है तो हम हमारा यीशु मसीह उठाए नहीं, तो मर गया और मरे ही रहा। तो हम बोल रहा है कि वो जी उठा तो हम झूठे वाले हैं, और हमने पूरा जिंदगी दे दिया उनका चेले बनने के लिए, हम बेवकूफ हैं। देखो कैसे 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 गलत उपदेश लाया शैतान शुरुआत के कलीसिया में। आपके लिए ये सब बहुत सरल और साधारण रहेगा, ये कोई उपदेश नहीं है जहां हम फंसने वाला है ब्रदर। लेकिन मैं बताऊंगा धीरे धीरे कि कितना उधर से शुरू होके आज तक कितना तक शैतानी चाल बढ़ गया पूछे तो सोच लो। अगर 100 साल के अंदर इतना चाल, तो 2000 साल में कितना चाल? मास्टर्स डिग्री किया होगा, डॉक्टर्स डिग्री, कितने कितने गलत उपदेश लाया होगा हमारे बीच में। अभी धीरे धीरे आपको बताया तो आप सह सकेंगे, धीरे धीरे एकाएक हम बोले तो आप गुस्सा होके बोलते बाहर जाओ बाहर जाओ, ये नहीं सुनने वाला है। एक वचन बताता हूं, यूहन्ना 16:13। यूहन्ना 16:13। माफ कीजिएगा। देखो बहुत सारे बातें हम आपको बताने को दिल चाहते हैं, लेकिन अभी आप सह नहीं पाएंगे। एक बात बोलता हूँ, हमारा जो क्लासेस अभी आपके बीच में लेने वाला है, हम सिर्फ वचन से बताएंगे। लेकिन अगर जट्टा के ऊपर जट्टा आते हैं, आप समझ लो ये जट्टा हमसे नहीं आ रहा है, ये जट्टा वचन से आ रहा है। पहले ही बोल रहा हूं आपको चेतावनी, हम सिर्फ सच्चाई बताने के लिए इधर आए हैं। हम आपको हमारे तरफ इकट्ठा करने के लिए, हम कुछ चाल जाल लाने के लिए नहीं, हम तो सिर्फ सच्चाई बताने के लिए आए हैं। और सच्चाई जो है रोशनी है, और वो रोशनी सिर्फ इधर से प्रकट होता है। और जब इधर से प्रकट होता है, और अगर आपको जान लेता है कि आज तक आपने जो बहुत सारे बातें जो आपने विश्वास किया वो इसमें नहीं है, आप मत चौंकना है, क्योंकि ये काम जो है शैतान लगभग 2000 साल करते आ रहा है, सभी 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 धोखे में लेके जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो यहां शैतान पुनर्तान के ऊपर भी हमला किया, पुनर्तान ही नहीं है बोला। धीरे धीरे 6 सदी के बाद एक नया धर्म शुरू किया, मुसलमान धर्म। और मुसलमान धर्म और मुसलमान के किताब में बोलते हैं कि प्रभु यीशु मरा भी नहीं, प्रभु यीशु मरा भी नहीं। कुरान में बताता हूं, कुरान में सूरा अन-नीसा चौथा अध्याय, कुरान का चौथा अध्याय सूरा अन-नीसा, वचन 157, चौथा अध्याय 157 वचन 157, वहां दिया है कुरान, ये कुरान का है, ये कुरान का है, चौथा अध्याय 157 वचन, कुरान के चौथा अध्याय 157 वचन, जिनका नाम है वो अध्याय का नाम है सूरा अन-नीसा। वहां दिया गया है कि कुरान में यीशु परमेश्वर का बेटा नहीं जो बोलते हैं, मरियम का बेटा, तो कुरान में बोलता है यीशु मरियम का बेटा सचमुच क्रूस में नहीं मरा। जो कोई ऐसा समझते हैं वो उलझन में है, जो कोई ऐसा बोलते हैं वो बिना समझदारी से बात कर रहे हैं। आप अगर कुरान मिलते हैं तो पढ़ लो, अगर कोई किसी से मिले तो ये वचन पढ़ के देख लो। इसलिए अगर आप मुसलमानों के बीच में बोलते हैं प्रभु यीशु मरा, वो जरा ऐसा हंसता, तुम बेवकूफ लोग मरा बोल रहे हैं, नहीं मरा, वो मानते नहीं मरा। क्या बोलता है कि जो क्रूस पे मरा वो दूसरा आदमी था, यीशु का आत्मा उधर से निकल के चला गया, ऐसा ऐसा बोलते हैं, ऐसा ऐसा मानते हैं। यो वो ये सब किसका चाल है, ये सब शैतान ही चाल है। देखो कैसे कैसे किया, कैसे कैसे आज तक हुआ होगा। तो ऐसे ऐसे चाल और आक्रमण शैतान ने सच्चाई के ऊपर किया, और ये चेतावनी कि ऐसा होगा, ऐसा झूठ होगा, और झूठा भविष्यताओं भी होगा, और झूठा उपदेश उपदेशक भी होगा, ये पौलुस भी चेतावनी दिया और प्रभु यीशु भी चेतावनी दिया। वचन में पढ़ लेंगे, पहला पौलुस का चेतावनी, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 29 और 30वां वचन, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 29 और 30।
मैं चाहता हूं जो मेरे जान के पिछो बुरे बुरे कपियार वो आदि में आवे,
आप पढ़ लो हिंदी में, मैं
जो इसे नाम ना चला है अति तुम्हारे आपने ही जो कई कुछ खड़े होंगे जिसे उल्टियां तला कर सके पई चेजा नू आपनी वालों के लिए जान।
मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आए,
मेरे जाने के बाद मतलब मेरे मौत के बाद
तुम्हें आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे।
देखो झुंड को नहीं छोड़ेंगे,
तुम्हारे ही बीच
किसके झुंड नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर के झुंड, परमेश्वर के झुंड नहीं छोड़ेंगे। और क्या करेंगे,
तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने,
अपने कलीसिया शुरू करने के लिए अपने झुंड, जैसे आजकल पास्टर क्या बोल रहा है, ये मेरा समय, मेरा कलीसिया है, वो तेरा कलीसिया है, तुम्हारा कलीसिया किधर है, उधर है, और हमारा तो इधर है, और प्रभु का है। नहीं, देखो कैसे आदत हो गया, अभी अपने लिए बेड भी अपना है, बिल्डिंग भी अपना है, कलीसिया भी अपना है, सब कुछ अपना है, देखो कैसे हो गया। तो ये पहला भविष्यवाणी चेला पौलुस ने दिया, ऐसे ही हो चुका है। इसी तरीके से एक और भविष्यवाणी प्रभु यीशु भी दिया, मती में पढ़ते हैं, मती 7वां अध्याय 15वां वचन, समझना ये वचन पढ़ लो,
झूठे भविष्यताओं से सावधान रहो।
देखो झूठे भविष्यताओं से सावधान रहो, कैसे सावधान रहना, पढ़ लो,
जो भेड़ों के बीच में तुम्हारे पास आते हैं,
कैसे आएगा, भेड़ों के रूप में और
परंतु अंदर से वे लोग फाड़ने वाले भेड़िए हैं।
तो ये इसका मतलब क्या है? भेड़ों के रूप में जो चमड़ी जो है ना भेड़ का लग रखते हैं, लेकिन अंदर जो है भेड़ नहीं, अंदर है भेड़िया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे भविष्यताओं होगा, बहुत सारे ऐसे सेवक होगा जो आते वक्त उनके जो बाहर के रूप देखने में ऐसे लगेगा कि वो नरम है, वो कोमल है। नमस्ते बहन जी, नमस्ते ब्रदर जी, आप कैसे हो, आइए बैठिए, तो ऐसा ऐसा चाल चलन करेगा। लेकिन अगर वचन के बारे में पूछ लेते हैं और अगर वचन को नहीं समझते हैं तो अंदरूनी भेड़िया बाहर आएगा। किधर से सीखा ये, किसके अनुमति से ये क्लास तो जा रहा है? पास्टर से सवाल पूछ रहे हैं, पास्टर से। ऐसा ऐसा सारे रूप दिखाते हैं। सचमुच हमारा जो बुलावा है आत्मिक बुलावा, सचमुच एक सेवक का सेवा है आत्मिक सेवा। झुंड को आत्मिक रूप में बढ़ना है, झुंड को परमेश्वर के वचन को समझना है, बढ़ना है, और ये है एक ही मकसद। इसके छोड़ के कोई और मकसद नहीं है। तो लोग कितने भी सवाल पूछे, हमारे पास ये फर्ज बनता है वो सवाल का जवाब दे दे, या नहीं जानते तो बोलना है नहीं जानते हैं। क्योंकि प्रभु बोलते हैं तेरा जवाब हाँ रहना या ना रहना है। जब आप नहीं जानता तो भी आप कबूल करना और बताओ कि मेरे पास जवाब नहीं है सिस्टर, ये मेरे को नहीं जानता है। ऐसा नहीं है कि अपने आप ज्ञानी दिखाने के लिए तुम कल्पना में कोई बात करे और जवाब देते, ये मत करना है, मत करना है। अगर हम जानता है तभी जवाब देना, नहीं जानता है बताना माफ कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं थोड़ा इधर उधर ढूंढ के देखेंगे अगर मेरे को जवाब मिल सकते, लेकिन अभी मेरे पास ये जवाब नहीं है। तो प्रभु बोलते हैं बहुत सारे ऐसे झूठे भविष्यताओं आएंगे। भेड़िया जो आपको जानता ना, भेड़िया का मकसद क्या है? भेड़ को खाना। तो ये भेड़िया भविष्यताओं और भेड़िया सेवकों का एक ही मकसद है कि लोगों से उनका पैसा आना है, उनका खाना आना है, उनका गुजारिश आना है। तो ये सेवकों ढूंढता है कि उनके लिए क्या मिले, वो ये नहीं ढूंढता है कि लोग को क्या दिए। यह है फर्क। सच्चा सेवक देने के लिए आता है, लेकिन ये लोग लेने के लिए आते हैं। समझ गया? ये डरने वाला बात है, ये गुस्सा देने वाला बात है। जो ऐसे लोग है ना, ये बात सुनने तो अंदर के अंदर गर्म हो जाएगा, गर्र हो रहा होगा, क्योंकि उसको पसंद नहीं है ये बात। और अंदर आवाज भी बोलते है तुम ऐसा आदमी है, तुम ऐसा आदमी है, हर वक्त तुम लेने के लिए ही आ रहा है, तुम देने के लिए नहीं आ रहा है। हम देने के लिए होना चाहिए, ये है सेवा का मतलब है, ये है सेवक के मतलब है। प्रभु यीशु ही बोला हम इधर आया है सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए। तो हम अगर उनका चेला है तो हम वही करना पड़ेगा, हम लेने के लिए नहीं आना है, हम देने के लिए आना है। तो ये बात को देखते हैं। देखो तो प्रभु बोला बहुत सारे झूठे भविष्यताओं होगा, और ये झूठा भविष्यताओं के रूप भी बताया कि भेड़ के जैसे रूप में आएंगे, लेकिन अंदरूनी स्थिति में वो भेड़िया है। एक और वचन हम देखना है और समझना है। भविष्यता बोलते वक्त, झूठा भविष्यता बोलते वक्त, आजकल भविष्यवाणी का मतलब क्या है? बहुत सारे मसीहों के बीच में, बहुत सारे कलीसियाओं के बीच में भविष्यवाणी का मतलब क्या है? बहुत लोग क्या बोलता है, आज एक भविष्यता आ रहा है इस जगह से, इस देश से, और वो भविष्यवाणी बोलेगा। तो आराधना के बाद सब आंख बंद करके वो भविष्यता बोलेगा, अलेलुया अलेलुया, परमेश्वर के कृपा से अभी मैं तुमको थोड़ा भविष्यवाणी बोलने वाला है। एक बहन है इधर जिनका नाम है रूपा रूप रू, रूपा बहन, रूपा बहन के लिए मैं बोलता हूँ, प्रभु बोलता हूँ, आपका कुछ बहुत सारे महीने से आपका कुछ कष्ट हो रहा है, आपका बेटा का काम नहीं हो रहा है, प्रभु बोलता है तुम फिक्र मत करो, दो ही महीने में तुम्हारा बेटा को बहुत अच्छा काम मिलने वाला है। हालेलुया। और एक बाय है इधर, मसी योहाना मसी के नाम से, उसको बहुत बीमार है, लेकिन प्रभु बोलता है तुम बहुत जल्दी ठीक होने वाला है, और ठीक ना सिर्फ अब सेवा के अंदर आने वाला है। हालेलुया। तो ऐसा 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 ये है भविष्यवाणी। आजकल ये भविष्यवाणी बोलते हैं, लेकिन सचमुच भविष्यवाणी क्या है? सचमुच भविष्यवाणी का मतलब पढ़ लो, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 10वां वचन, प्रकाशित वाक्य 19:10। पढ़ो पढ़ो। हाँ पहला पंजाबी कर लो। 19:10 प्रकाशित वाक्य 19:10।
अते वो मथा टेक कर रही, मैं देख के ओ दे चलनी पिया, ता ओ मैं जुआ पिया, ते क्यों ना कर, मैं तब तेरे अते तेरे भरावां दे जेड़े यीशु मसीह की साथी भरदे हन नाल दा दा था, पर जिस नू मथा टेक यीशु दी गवाही दा अगा वाप दी रूह है।
पढ़ लो।
तब मैं उसे दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरे और तेरे भाइयों के संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है।
देखो यीशु के गवाही वो भविष्यवाणी का आत्मा है। सच्चा भविष्यवाणी का मतलब है यीशु के गवाही, और यीशु के गवाही शुरू होता है उत्पत्ति से और जाता है प्रकाशित वाक्य तक। तो यीशु का गवाही जो देता है वो सचमुच भविष्यवाणी है, और सचमुच भविष्यता वही है। लेकिन आजकल देखो क्या क्या रूप में बदल गया है भविष्यवाणी, और क्या क्या मतलब देता है आजकल भविष्यता। तो ये है सच्चा भविष्यवाणी, और ये है सच्चा भविष्यता। मतलब परमेश्वर के वचन सिखाने वाला वो है भविष्यता, क्योंकि भविष्य परमेश्वर के वचन तो समझने के लिए आसान नहीं है। हम चाहिए मदद परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, और वो मदद करने वाले और वो सच्चाई को बताने वाले वही भविष्यता है, जो यीशु का गवाही देता है वो है भविष्यवाणी का आत्मा है। एक और वचन अभी हम पढ़ना है, पहला योहन्ना चौथा अध्याय वचन 1 और 2। पहला योहन्ना चौथा अध्याय वचन 1 और 2।
हे प्यारे, हरेक आत्मा की प्रति ना कर लो, सब आत्मा परखो कई और परमेश्वर के हाथ के नहीं, क्यों जो वादे झूठे नबी संसार में निकल आए हैं, फिर तो तुम परमेश्वर के आत्मा को जान लो। हरेक आत्मा जो मांगने का है वह यीशु मसीह देहधारी होके आया, तो परमेश्वर को है।
तो ये वचन पर हम थोड़ा ध्यान करना है, क्योंकि इसमें बहुत अहम बात बता रहा है।
हर एक आत्मा के प्रतीत ना करो, वन आत्मा को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं।
तो इसका मतलब क्या है? हर एक आत्मा को प्रतीत या विश्वास ना करो, वर्णन वो आत्माओं को परखना है कि वो परमेश्वर से आया है या नहीं। ये तो कैसे करें? आत्मा का मतलब क्या होगा? आजकल हमारे बीच में अगर ये इसका जवाब पूछे तो हम बोलेंगे ये आत्मा भूत है। तो भूतों से पूछना है क्या सवाल, अगले बार अगर भूत मिले तो आप किधर से आ रहा है, आप परमेश्वर से आ रहा है या किधर से, ऐसा मतलब है ये वचन नहीं। ये वचन का मतलब कुछ गहरा है, इसलिए मैं आपके सामने लाया। ये आत्मा शब्द जो है बाइबल में, आत्मा, इसको तीन मतलब है। ये पहला आपको जानना है, हमने पवित्र आत्मा नहीं बोला, हमने परमेश्वर ही एक आत्मा वैसा नहीं बोला, हम सिर्फ बोलता है आत्मा। ये आत्मा शब्द जो है वचन में तीन मतलब होता है, तीन। जब तक ये आप नहीं जानते हैं, ये ऐसे वचन में इसका मतलब भी आप नहीं जान पाएगा। तीन मतलब है आत्मा। पहले बात, एक आत्मा का मतलब है अनदेखी, इनविजिबल। पहला मतलब आत्मा का अनदेखी, दूसरे बात आत्मा का शक्तिशाली, जो अनदेखी और जो शक्तिशाली, क्या बोलूं, चीज है, यह है आत्मा। लेकिन तीन मतलब है आत्मा। पहला मतलब आत्मा अभी देख लेंगे, क्योंकि यहां यहां यूहन्ना बोलता है हर एक आत्मा को प्रतीत ना करे, तो हम ढूंढना अभी इस आत्मा का मतलब क्या है। तो तीन आत्मा का मतलब है, पहला मतलब देख लेंगे। पहला मतलब है प्रसंगी के किताब या सबोपदेशक ना, नीति वचन के अगले किताब उपदेशक, सबोपदेशक या सबोपदेशक 12:7, सबोपदेशक 12:7।
अतः खाद मिट्टी नाम चला राम जा रहे, अभी आत्मा परमेश्वर के तौर बोल जावे, जैसे उसमें बच्चे।
तो ये पहला मतलब जो अभी हम देखने वाला है, ये आत्मा का मतलब क्या है, पढ़ लो।
तब मिट्टी जो कि त्यो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी।
तो ये पहला मतलब आत्मा बाइबल में। ये आत्मा का मतलब क्या है, ये मतलब है जब हम मरते हैं, जब हम मरते हैं हम दो हिस्सा हो जाते हैं, एक हिस्सा शरीर जो मिट्टी को चले जाते हैं और एक और हिस्सा आत्मा। आत्मा मतलब सांस जो परमेश्वर दिया शुरू में, ये तो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2:7, उत्पत्ति 2:7। जल्दी जल्दी पढ़ो क्योंकि टाइम नहीं है, अगर लेट करे तो।
तब पिता परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसकी नसनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आत्मा जीवित प्राणी बन गया।
तो ये जीवन का श्वास जो फूंका, ये है आत्मा, ये परमेश्वर दिया और ये परमेश्वर के पास वापस जाते हैं। तो ये सांस जो है जिसके जिसके जरिए से हम जीते हैं, ये सांस जो है हम देख नहीं पाते हैं ना, सांस तो हम देखता नहीं, लेकिन सांस का शक्तिशाली, देखो कितना शक्तिशाली है, जब तक सांस है तो जान है और अगर सांस निकल जाते हैं जान हो ही नहीं रहता है। तो ये पहला मतलब है। और यहां यूहन्ना कह रहा है हर एक आत्मा को प्रतीत ना करे, तो जरूर यहां नहीं कहा हर एक सांस को प्रतीत ना करे, तो ये मतलब नहीं है। लेकिन ये पहला मतलब जो आपको जानना चाहिए, पहला मतलब सांस है आत्मा के लिए, सांस। दूसरा मतलब आत्मा के लिए दानियल, दानियल 2:1, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, दानियल 2:1।
अपने राज्य के दूसरे वर्षों में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया।
उसके मन बहुत ही व्याकुल हुआ। ये मन का शब्द अंग्रेजी में स्पिरिट वॉज ट्रबल। तो ये दूसरा वर्ड जो अंग्रेजी में सिर्फ एक वर्ड है स्पिरिट। स्पिरिट उधर है, स्पिरिट इधर है। लेकिन आप हिंदी में देखते हैं और पंजाबी में देखते हैं, वहां तो आत्मा था और यहां तो मन है। दोनों स्पिरिट है। यहां मन का मतलब क्या है? नहीं, दिमाग नहीं, मन। मन मतलब पूछते हैं ना, आपका मन किधर है? हम इधर बोलते हैं। अगर मैं बोलता हूं तेरे मन को मैं देखना हूं, मैं बड़ा चाकू लाता हूं और आपका आपका सिर को काटते हैं और देखते किधर है मन, आप बोलते दिमाग ही दिखता है, मन किधर है, नीचे गया? नहीं, मन जो है अनदेखी चीज है, अनदेखी चीज है। अगर किसी के पास मन नहीं होता है या मन बराबर काम नहीं करते है, वो जी नहीं पाते हैं, वो पागलखाने में रखना है कि नहीं? जिसका मन बराबर काम नहीं करता वो नहीं जी सकता है। तो मन बहुत महत्वपूर्ण है। मन अनदेखी है और मन शक्तिशाली है। मन अंग्रेजी में माइंड, माइंड, माइंड। दूसरा मतलब आत्मा के लिए माइंड। तो यहां यहोना कहता है हर एक आत्मा को प्रतीत ना करे, तो हर एक मन को प्रतीत ना करे ऐसे नहीं बोला। लेकिन ये दूसरा मतलब आपको जानना है। आत्मा का दूसरा मतलब है मन। मन, मन का मतलब है अनदेखी शक्ति जिससे हम चलते हैं। हमारे मन के हिसाब में हम चलते हैं, हमारे मन के हिसाब में हम सोचते हैं, हमारे मन के हिसाब से सब कुछ होते हैं हमारा जिंदगी। तो मन है एक अनदेखी चीज लेकिन शक्तिशाली चीज। ये आत्मा का दूसरा मतलब। तीसरा मतलब अभी हम ढूंढना है आत्मा, क्योंकि ये सांप और ये मन दोनों जमता नहीं है यहां यहोना के बातों में। यहोना बोलता है हर एक आत्मा को प्रतीत ना करे, तो हर एक सांप या हर एक मन को प्रतीत ना करे इसका मतलब बराबर नहीं है। अभी तीसरा मतलब आत्मा को हम जाएंगे, प्रभु यीशु से हम सुन लेंगे। यहूना छठा अध्याय 63वां वचन, 6:63।
आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वे आत्मा है और जीवन भी है।
देखा, प्रभु बोलता है जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं ये वो आत्मा है। इसका मतलब है शब्दों, शब्दों आत्मा है। शब्दों के साथ कितना शक्ति है मालूम? हिटलर नाम के एक आदमी शब्दों के जरिए से पूरा जर्मनी को पागल कर दिया है कि नहीं? तो शब्द के साथ कितना शक्ति है देखो। लेकिन शब्द कोई देख सकता है? शब्द कोई देख सकते हैं? नहीं। शब्द तो अनदेखी है, लेकिन शब्द के साथ क्या है? बहुत शक्ति है, शक्तिशाली है। तो यहां प्रभु बोलता है जो शब्दों में तुमको बता रहा है, जो बातें मैं आपको बता रहा है, वो आत्मा है। तो तीसरा मतलब आत्मा जो बाइबल में, उसका मतलब है शब्दों, शब्दों। और इसका मतलब ही यहन्ना कह रहा है हर एक आत्मा को प्रतीत ना करे। हर एक जो शब्द जो आप सुनते हैं वो आप कबूल ना करे। आप परीक्षा करो कि क्या वो शब्द, कि क्या वो आत्मा परमेश्वर से आता है या नहीं, या क्या वो शब्द परमेश्वर के किताब से आता है या नहीं, यही तो पूछ रहा है। तो आत्मा का तीसरा मतलब जो बहुत अहम मतलब है क्या है हम देखता है। इसका मतलब है शब्द, शब्द, वर्ड। तो आप तो समझ गया होंगे कि पहला यूहन्ना में ये चेतावनी क्या दे रहा है चेला योहन्ना बोलता है कि जैसे जैसे आप सुनते हैं सेवक के बात, आप सोच समझ के सुनना है। हमारे बात भी आप सोच समझ के सुनना है, आंख बंद करके और कान बंद करके किसी के बात नहीं मानना है और किसी के बात स्वीकार नहीं करना है। आपका और हमारे लिए एक उदाहरण, पुराना नियम, पुराने दिनों में जब कलीसिया की शुरुआत हुआ तभी से हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 11वां वचन, प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 11वां वचन।
ये लोग तो तसलुनीकियों के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी नासा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में पूछते रहे कि ये बातें जो ही नहीं है।
देखो यहाँ पौलुस तो प्रशंसा कर रहा है थोड़े लोगों, बेरिया वाले, बेरिया वाले लोगों ने पौलुस कहता है जो कोई शिक्षा जो पौलुस देते थे वो ऐसे ही अपनाते नहीं, वो जाके घर में ढूंढते हैं कि पौलुस जो जो कुछ शिक्षा दिया क्या वो वचन बोलता है कि नहीं, जाके परीक्षा करते थे, ढूंढ के देखते हैं, बोलता है ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वचन ही आप विश्वास कर सकते हैं, मनुष्य को विश्वास नहीं कर सकता है। कल मैं बदल सकता हूं, कल मैं गिर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर के वचन कभी गिर नहीं सकता। तो ये बात आप याद में रख लीजिए, आपने पूरा विश्वास सिर्फ वचन में रखो, आपका प्रेम आपका मर्यादा सेवक के दे दो लेकिन विश्वास वचन पर रखो। अगर विश्वास कोई इंसान पर आप रखते हैं, अगर उस इंसान को कुछ होते हैं आपका विश्वास तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये बात तो बहुत बहुत अहम है कि जैसे जैसे हम देखते हैं बेरिया कलीसिया वाले का उदाहरण कि हम परमेश्वर के वचन में ढूंढना है। जब कभी हम कोई बात सुनते हैं और खास करके नए बात सुनते हैं, हम घर में जाके अपने बाइबलों से हम ढूंढ के देखना है कि क्या वचन ऐसे ही कहता है कि नहीं। तो ये एक अच्छा आदत है। ये बात के लिए पौलुस बेरिया वालों को प्रशंसा किया। एक और वचन पढ़ेंगे अभी, पहला तिमोथियुस 4:1-2 वचन, पहला तिमोथियुस 4:1-2 वचन।
परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग गुरबाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बह जाएंगे। ये उन मूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिसका विवेक मानो जलते हुए लोहे में दागा गया है।
तो यहाँ देखते हैं एक भविष्यवाणी पौलुस बोलते हैं, कहता है कि आत्मा स्पष्ट कहता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों का मतलब उस पहला सदी के हिसाब से ये तीसरा सदी, तीसरा और चौथा सदी 300 साल बाद ऐसा होने वाला है करके पौलुस ने लिखा। तो बोला क्या क्या होने वाला है, एक तो बोला भरमाने वाले आत्मा और दुष्ट आत्मा का शिक्षा, भक्तों कान देंगे सुनने के लिए, और उसके बाद बोला कि झूठ बोलेंगे, और उसके बाद बोलेंगे शादी नहीं करना है और जो चीज परमेश्वर ही आशीर्वाद किया ये नहीं खाना है, ऐसा सब आदती आ जाएगा करके बोला। तो ये सब हो चुका है, ये सब हो चुका है इतिहास में। ये क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जाते जाते ऐसे ऐसे बरमाने वाले आत्मा, बरमाने वाले आत्मा का मतलब क्या है, बहुत आकर्षक शिक्षा, सुनने के लिए बहुत आकर्षक है। जैसा उदाहरण के लिए बताता हूं, जो कोई परमेश्वर का सेवा करते हैं वो शादी नहीं करना है, वो शादी नहीं करना, वो बिना शादी रहना चाहिए, ये वचन नहीं बोलता है, कहीं भी नहीं बोलता है। वचन साफ साफ कहता है कि एक अध्यक्ष भी एक बीवी का पुरुष होना चाहिए, बाइबल ही बताता। लेकिन आजकल हम देखते हैं मसीहों के बीच में ऐसे आदत है, बोलता है जो परमेश्वर का सेवा करते हैं वो शादी नहीं करना। हमारे रोमन कैथोलिक दोस्तों हैं जिनका नाम फादर सिस्टर, और जब वो घर में आते हैं हम लोग सोचते हैं बहुत बड़ा बलिदान किया है कि शादी नहीं किया है, पूरा जिंदगी परमेश्वर के लिए दिया है। लेकिन परमेश्वर ही नहीं पूछा, परमेश्वर ही नहीं पूछा। ऐसा बरमाने वाला आत्मा, उसी तरह एक और बरमाने वाला आत्मा था कि प्रभु यीशु मरा कौन से दिन, फ्राइडे शुक्रवार। तो ऐसे आदत आ गया कि शुक्रवार में हम मांस नहीं खाएंगे, क्यों, क्योंकि प्रभु यीशु उस दिन मरा। तो ये एक एक ऐसा एक क्या बोलो तो एक एक, एक किस्म का बलिदान आया, बोला कि एक दिन हम बलिदान करेंगे, हम मांस नहीं खाएंगे प्रभु यीशु के लिए, क्योंकि ये प्रभु यीशु का मरे जिस दिन प्रभु यीशु ने मरा। और ये भी सुनने के लिए कैसा है, आकर्षक है, बहुत आकर्षक है। लेकिन बात क्या है, असली बात क्या है कि जो चीज मुंह में जाता है वो अहम नहीं है मनुष्य के लिए, लेकिन जो चीज मनुष्य के अंदर से बाहर आता है ना वो अहम है, उनके शब्दों उनके ख्यालों, ये अहम है। देखो कैसे कैसा परमेश्वर के वचन बदलते हैं। परमेश्वर के वचन खुद ही बोलता है जो कोई चीज जो कोई मांस आपको मिलता है मार्केट में आप ले लो, आप प्रार्थना करके खाओ। हम अभी अफ्रीका जाके आया 50 दिन उधर ही थे, कैमरून के देश के भक्तों के साथ बात करते हुए वो लोग क्या खाते मालूम, बड़ा बड़ा मछली नहीं क्या बोलते हैं रैट, बड़ा बड़ा चूहा, बड़ा चूहा, बड़ा चूहा खाते। ऐसे पूछता मेरे से ब्रदर खाएंगे, माफ कीजिएगा ब्रदर हम तो ये नहीं खाते लेकिन आप खाओ उसके बाद बड़ा बड़ा सांप, मोटे मोटे सांप, तो वो लोग खा रहे हैं, वो लोग खा रहे हैं। एक आदमी बोलता है मैंने हाथी भी खाया, मैं क्या बोलूं मैं बोला तुम क्यों हाथी खा रहा है, हाथी तो एक अच्छा जानवर है। बोलता है जब मनुष्य भूखा है तो गुस्से वाले होते हैं, तो क्या करो कुछ नहीं मिला हाथी ही खाया। तो ये सब जो बात जो हम देखते हैं इधर से मालूम होता है कि जो चीज हम खाता है वो अहम नहीं है, उससे आदमी बदलता नहीं है। ये खाना ये नहीं खाना, पुराना नियम में थोड़ा नियम था, सुअर का जो मांस नहीं खाना पुराने नियम में था, लेकिन अभी नया नियम में वो नियम इधर नहीं है। हमारा नियम क्या है, सब कुछ खा सकता है, लेकिन आपका भाई अगर ये बात नहीं समझ पाता है और उसके विश्वास के लिए अगर आप कोई चीज खाते हैं और उसको बुरा लगता है तो उसके लिए, सिर्फ उसके लिए और उसके विश्वास के लिए आप ये करो मत खाओ। ऐसा नहीं कि वो बुरा है, ऐसा है कि तुम्हारा भाई अभी विश्वास में ये बात नहीं समझ पा रहा है तो उसके विश्वास के लिए तुम मत खाओ, प्रेम के वास्ते, प्रेम के वास्ते। लेकिन असली में चीजों में कुछ नहीं है, खाने वाले चीज में कुछ नहीं है। लेकिन देखो ये बरमाने वाला आत्मा कि परमेश्वर प्रभु के मरने वाले दिन शुक्रवार को हम मांस नहीं खाएंगे। थोड़े 10-15 साल तक पहले तक ये एक नियम था, 10-15 साल पहले, उसके बाद रुक गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे बातों भी हुआ इस बात के बारे में। तो दूसरे बात दोबारा वो वचन पढ़ेंगे, अभी ये बातें आपको बताने के बाद अभी वो वचन का गहरा मतलब भी आप समझ लेंगे। वही
4:1-2
परंतु
आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आगे वाले कमरों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे।
दुष्ट आत्मा का शिक्षा का मतलब है शैतानी नहीं शैतानी शिक्षा। सिर्फ दो शिक्षक है, एक परमेश्वर एक शैतान। जिसका जो जिस उपदेश इधर नहीं है और जो लोग मानते हैं वो शैतान का शिक्षा है, जिस उपदेश इधर है वो परमेश्वर का शिक्षा है। सिर्फ दो शिक्षक है, एक तो परमेश्वर एक तो शैतान। तो दुष्ट आत्मा का शिक्षा का मतलब है शैतानी शिक्षा, जो परमेश्वर के किताब में नहीं है या परमेश्वर के शिक्षा के विरुद्ध है। पढ़ो,
ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो।
और आगे पढ़ो,
वे जो विवाह करने से रोकेंगे।
देखो, विवाह करने से रोकेंगे, जो हुआ ना विवाह करने के रोकेंगे,
और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं।
देखो कितने कितने बदली आया अति पवित्र विश्वास के ऊपर, कितने कितने बदली आया। तो ये सब कलीसिया के शुरुआत में भविष्यवाणी के रूप में हम पढ़ते हैं। एक और भविष्यवाणी पढ़ेंगे, ये है पहला तिमोथियस 3:2। पहला तिमोथियस 2 तिमोथियस 4:2-4 दूसरा तिमोथियस 4:2-4।
वचन का प्रचार कर समय और असमय तैयार रहे, वह सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा
बोलता है वचन, लेकिन वो समय आ चुका है। पढ़ लो,
जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे।
देखो, जो जब लोग अच्छे उपदेश ना सह सकेंगे,
कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे।
देखो, ऐसे उपदेशक बटोर लेंगे जो उन बातों जो इनको पसंद अच्छा करते हैं वो बातों बताना है कि तुम लोग परमेश्वर के लोग हैं, तुम आशीर्वादित लोग हैं, तुम परमेश्वर हमेशा आशीर्वाद करेंगे, परमेश्वर तुम्हारे को शांति देंगे। लेकिन कोई ऐसा बात नहीं बताता है कि लोग क्या क्या बुराई कर रहे हैं, क्या क्या कमियां हैं, कैसे कैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, वो सब चेतावनी नहीं देता है। तो ये सब ऐसा स्थिति जो भविष्यवाणी बोलता है आने वाला है वो वाकई आ चुका है हमारे बीच में, अभी है ऐसा भविष्यवाणी। क्योंकि आजकल के जो कलीसियाओं, ज्यादातर कलीसियाओं और ज्यादातर लोग पसंद नहीं करता ज्यादा समय परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, बोलता है आधा घंटे बात करना है, उसके बाद हमसे नहीं होता है, हम बिजी है, तो आधा घंटे ही बात करना है, ज्यादा बात नहीं करना है, ज्यादा गहरा नहीं करना है। तो देखो लोग कैसे आजकल कैसे कैसे बदल गया है, परमेश्वर के वचन सुनने में भी खुद ही काबू रखते हैं। तो मैं दुनिया भर की बात आपके सामने रखते हैं, पंजाब की क्या हाल चाल है मेरे को नहीं जानते हैं, लेकिन बाकी सारे जगहों में आजकल कलीसियाओं के बीच में ज्यादा महत्व परमेश्वर के वचन को नहीं देते हैं, ज्यादा महत्व परमेश्वर के वचन के पढ़ाई के लिए नहीं देते हैं, नहीं सह सकते हैं। तो ये स्थिति और ये वातावरण जैसे जैसे भविष्य वाणी में बोला गया है वो अभी हमारे सामने अभी हो चुका है। और भी थोड़े वचनों अभी हम पढ़ लेंगे, वो ये है कि परमेश्वर की सच्चाई जब हम बताते हैं, हम ऐसा बताना है कि धीरज के साथ और प्रेम के साथ। एफेसियों 4:15
चलते हुए दस बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए।
तो देखते हैं कि हम जब परमेश्वर के वचन को उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, हम बहुत प्रेम से और धीरज से देना है। हम झगड़ा से नहीं करना है, हम किसी से गुस्सा नहीं दिखाना है। तो ये बहुत अहम है कि परमेश्वर के वचन की देने की ढंग भी बहुत अहम है। अभी ये अति पवित्र विश्वास, ये परमेश्वर के वचन के विश्वास जो कलीसिया में शुरू हुआ पहला सदी में, जाते जाते कलीसिया कहाँ कहाँ स्थापित हुआ, पहला जेरूसलम, दूसरा ग्रीस के देश में अंटियोक, तीसरा अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट के नॉर्थ के हिस्से में, चौथा आज के तुर्की के कॉन्स्टेंटिनोपल, और पांचवा रोम। ये पांच नगरों में पहला मसीह का विश्वास स्थापित हुआ। तो ये आपको जानना है, क्योंकि बाद में हम देखेंगे थोड़े बातों इसके ऊपर। अभी कलीसिया स्थापित होने के बाद कलीसिया के अरेंजमेंट जो है, जो इंतजाम जो था, सबसे बड़े सेवक उसका नाम था अध्यक्ष, बिशप। ये वचन में पढ़ते हैं, पहला तिमोथियुस तीसरा अध्याय पहला और दूसरा वचन।
ये बात सत्य है कि जो लोग अध्यक्ष होना चाहते हैं वे भले काम की इच्छा करता है। ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला।
बस बस बस, तो यहाँ तो देखता है अध्यक्ष के बारे में दिया गया बात। तो अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, यहाँ पढ़ता है कि अध्यक्ष को एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। लेकिन अजीब बात है, यह है कि आजकल के अध्यक्ष को शादी ही नहीं करते हैं। आजकल के अध्यक्ष शादी ही नहीं करते, शादी ही मना है। आपके लिए कुछ कष्ट है, अभी अंधेरा हो गया है, करंट नहीं है, लाइट नहीं है, अंधेरे में हम रोशनी की बात कर रहे हैं। आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप तो सुन सकते हैं। ओके, तो यहां तो देखते हैं कि कैसे कैसे नियम था अध्यक्ष के लिए, लेकिन बाद में देखे तो आजकल ये स्थिति कैसा है अध्यक्षों के बीच में। एक और बात है जो आजकल हम देखते हैं सेवकों के बीच में, जो अति पवित्र विश्वास के अनुसार नहीं चल रहा है। आजकल बहुत सारे सेवकों एक नाम इस्तेमाल करते हैं, एक पद आप भी सुना होगा, रेवरेंड का जो पद इस्तेमाल करते हैं। अभी ये रेवरेंड का पद जो है किधर से आता है, ये आता है बाइबल से, भजन संहिता 111 और वचन 9। भजन संहिता 111 और 9 वचन।
उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है, और उसका नाम पवित्र और जययोग्य है।
भय योग्य शब्द जो है, ये जब अगर आप अंग्रेजी में देखा जाए, इसका शब्द आता है रेवरेंड। होली एंड रेवरेंड इज हिज नेम, किसका नाम, पिता परमेश्वर का। तो पिता परमेश्वर का नाम जो भय योग्य है, जो सचमुच भय योग्य है, तो ये नाम एक इंसान कैसे प्रयोग कर रहा है, सोच लो। तो ये जो है चेले पौलुस, चेले यूहन्ना, चेले पत्रस, इतने सारे चेले थे, वो कभी भी नहीं बोला कि मैं रेवरेंड हूं, कभी भी नहीं बोला। मैं जब गया अभी अफ्रीका को, केन्या में गया, और केन्या में हम एक जेल में गया, क्योंकि वहां जेल में एक भक्त था जो ड्राइवर के काम कर रहे थे, तो उसके क्वार्टर्स में गया उसको मिलने के लिए। और वहां जेल का एक चैपलन मतलब कैदियों को वचन बोलने के लिए एक आदमी था, और वो न सिर्फ वो जेल बल्कि बहुत सारे 3-4 जेलों का चैपलन है, वो आया मेरे को मिलने के लिए। वो सुना कि इंडिया से कोई आ रहा है, तो चलो मैं जाके मिलेंगे करके मेरे पास आया। मेरे पास आके हाथ बढ़ा के बोला, मैं रेवरेंड जॉन हूं। मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने पूछा, मैंने बोला, सर मैं आपको रेवरेंड नहीं बुला सकते हैं, आप रेवरेंड नहीं हो सकता है, रेवरेंड तो सिर्फ परमेश्वर है। वो बोलता है क्या बात करते हो, गुस्सा आ गया हमको। मैं बोला पढ़ लो भजन संहिता 111:9, वहां साफ साफ बताता है कि वो रेवरेंड का नाम सिर्फ परमेश्वर के लिए है, और सचमुच आप परमेश्वर तो नहीं है ना, नहीं वो ऐसा बात नहीं है, वो ऐसे बात है। तो ऐसा ऐसा पलटने की कोशिश किया, तो मैंने बोला ब्रदर सर जी ऐसे बात नहीं है, बहुत साफ साफ है, ये रेवरेंड का जो नाम जो तो सिर्फ परमेश्वर के लिए दे सकते हैं, ये मनुष्य के लिए नहीं दे सकते हैं। उसे उसका गुस्सा बढ़ने लगा, बहुत बढ़ गया। तो तभी मैंने बोला सर जी एक बात बताता हूं, आज मैंने आपको देखा और आप मेरे को देख रहे हैं, मैं तो बिल्कुल चुपचाप रह सकता था, कुछ भी बात नहीं कर सकता था, कुछ भी बात ना करे और चुपचाप मैं बैठ सकता था, लेकिन एक दिन आप और हम न्याय में करना है, उस वक्त पूछा जाएगा कि क्या मैं परमेश्वर का सेवा करते वक्त सच्चाई प्रकट नहीं किया या प्रकट किया या नहीं किया, तो ये सवाल होगा उस दिन। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं तुमको बताता हूं ये सच्चाई, आप भजन संहिता में पढ़ लो 111:9 देख लो, और आप खुद ही फैसला कर लो। आप गुस्से में मेरे को मार सकता है, ज्यादातर मेरे को मार डाल सकता है, लेकिन उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन सच्चाई सच्चाई है, समझ लिया। तो ये रेवरेंड का जो शब्द जो है ये है परमेश्वर के लिए, लेकिन आजकल बाय योग्य, बाय योग्य
तो अपने नाम के सामने आरी भी
लगाते है ना, तो बाय योग्य है। तो अगली बार अगर मैं अगर कोई ऐसा पास्टर मिलते तो मैं पूछते आइए भाई योग्य, बैठिए भाई योग्य, आप क्या खाएंगे भाई योग्य, तो पूछे तो बोलेंगे से क्या बात कर रहे हो, नहीं ऐसा नाम आपने रखा है, आपने बोला तुम रेवरेंड है, तो रेवरेंड का मतलब है भाई योग्य है। भाई योग्य कौन है? परमेश्वर, परमेश्वर भाई योग्य है, क्योंकि परमेश्वर का सृष्टि ही भाई योग्य है, लेकिन एक इंसान एक मनुष्य भाई योग्य नहीं है। तो देख लो कैसे कैसे बदली अति पवित्र विश्वास के अंदर आ चुका है। एक और बात हम देखना है मत्ती में 23:9, मत्ती 23:9
पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है।
देखो ये पिता का नाम भी फादर, ये फादर नाम जो है धर्म की बातों में तो नहीं पुकारना है। हमारा रोमन कैथोलिक दोस्तों के बीच में हम देखते हैं ना फादर बोलते हैं, आप सोच लो क्या आप उनसे डरेंगे या प्रभु यीशु से डरेंगे? अगर आप प्रभु यीशु से डरेंगे तो आप प्रभु यीशु के शब्दों के मुताबिक आप पिता नहीं कहेंगे, फादर नहीं कहेंगे, आप कहेंगे सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो सर, लेकिन आप नहीं कहेंगे गुड मॉर्निंग फादर, कैसे हो फादर, क्योंकि वो फादर का जो शब्द प्रभु यीशु ही कहता है किसी को मत पुकारो, क्योंकि वो फादर का शब्द सिर्फ एक के लिए है, वो आपका स्वर्ग में है परम पिता, परम पिता। तो देख लीजिए कैसे कैसे बातें होते जा रहा है। एफएससीओं पहला अध्याय 22 और 23, मैं आपको बता रहा हूं वचनों के जरिए से कि अति पवित्र विश्वास कितना तक बिगड़ गया। अति पवित्र विश्वास मतलब वचनों के अनुसार का चाल चलन आजकल नहीं है। अगर वचनों के अनुसार चाल चलन होते ये सब नहीं होते। तो आजकल ये स्थिति आ चुके है, ये आपके सामने मैं वचनों के जरिए से रख रहे हैं। एफेसियों पहला 22 और 23,
और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराया, कलीसिया ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है।
तो सारे बातों के लिए कलीसिया में परमेश्वर प्रभु यीशु ही शिरोमणि रखा था। प्रभु यीशु जिंदा है, प्रभु यीशु जिंदा है। उस स्थान कोई मनुष्य नहीं ले सकता है। लेकिन आजकल हम देखता है कि इंसान बोलता है कि मैं कलीसिया का शिरोमणि है। जैसे जैसा हमारा रोमन कैथोलिक में देखता है, वहां कहता है कि रोम में पोप कहता है कि मैं सारे कलीसियाओं का शिरोमणि है। ये तो वचन के मुताबिक नहीं है ना, ये बिल्कुल वचन के विरुद्ध है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि आजकल परमेश्वर के वचन के जानकारी लोगों के बीच में नहीं है, लोगों के बीच में नहीं है, इसलिए ये स्थिति अभी हो रहा है। वचन में अभी हम पढ़ लेंगे कि ये जो हो रहा है हमारे बीच में कि ऐसे स्थिति आ चुका है, परमेश्वर के वचन को पढ़ता नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, ऐसा बिगड़े हुए स्थिति। ये तो पहले ही परमेश्वर को जानते थे कि शैतान ऐसे काम करेंगे। इसलिए दो दृष्टांतों में अभी हम पढ़ेंगे जहां मालूम हो जाएगा कि कैसे इस सुसमाचार के इतिहास में शैतान का प्रयास है कलीसिया को तोड़ने के लिए, कलीसिया को झूठे रास्ते में लेके जाने के लिए। वचन में पढ़ लेंगे मती 13 अध्याय 31 और 32, मती 13 अध्याय 31 और 32।
क्योंकि उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज गाय के दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है पर जब बढ़ जाता है तब सागपत से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी झाड़ियों पर बसेरा करते हैं।
यहाँ एक दृष्टांत प्रभु ने बताया। यहां प्रभु बोलता है परमेश्वर के राज्य एक रई के दाने की जैसे है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां प्रभु बोलता है कि परमेश्वर के राज्य का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि कलीसिया और मसीही वो लोग हैं जिनके बीच में परमेश्वर अभी एक चुनाव कर रहा है। किसके लिए? ना सिर्फ प्रभु यीशु के साथ दुल्हन होने के लिए, बल्कि प्रभु यीशु के साथ राज्य करने के लिए। तो कलीसिया राजाओं बनने के लिए अभी बुलावा और तलाश हो रहा है। जैसे जैसे आप सीख लिया होंगे चौथा और पांचवा क्लास में आसमान धरती, आसमान का मतलब क्या है और धरती का मतलब क्या है ना? आकाश और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी, पहला आकाश पहला पृथ्वी, दूसरा आकाश दूसरा पृथ्वी, तीसरा आकाश तीसरा पृथ्वी। तो तीसरा आकाश जो परमेश्वर के राज्य में होंगे, उस आकाश के अंधे की आत्मिक अधिकारियों कौन होंगे? वो कलीसिया है, कलीसिया वो अधिकारी हो जाएंगे। तो इसलिए यहां इस दृष्टांत में वो शब्द आता है परमेश्वर के राज्य। परमेश्वर का राज्य का मतलब क्या है? कलीसियाओं के बीच में ये चुनाव हो रहा है वो आत्मिक अधिकारियों के लिए। तो इस चुनाव के इतिहास में ये दृष्टांत बताता है, प्रभु बोलता है कि राई के दाने की जैसे है परमेश्वर के राज्य। जो एक मनुष्य लेके अपने खेत में बोया, पढ़ लो ब्रदर दोबारा वो वचन।
उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राय के दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया।
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मनुष्य है प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु यीशु से शुरू हुआ कलीसिया, और खेत है दुनिया, और बीज और राई के दाने का मतलब है छोटे शुरुआत। कलीसिया का शुरुआत सिर्फ 12 चेले, 120 लोग ऊपर के कमरे, 3000 लोग पेंटिकॉस के दिन, और बढ़ के 5000 लोग हुआ। एक छोटे शुरुआत से शुरू हुआ, और छोटे झुंड ही रहेगा हमेशा अगर सही उपदेश बोलते जाए। लेकिन चाक देखते हैं कि ये जो राई के दाने जो बोने के बाद, ये असल में ये एक पौधा है, ये 3 फुट का पौधा है। जैसा आप सरसों आप काटे ना, सरसों का साग, ये साग का बात हो रहा है। तो ये सिर्फ 3 फुट का पौधा होने वाला है, लेकिन ये अचानक इसका बढ़ोतरी इतना हो जाता है कि ये बढ़ते बढ़ते ये पेड़ बन जाता है। ये कैसे ऐसा बढ़ गया पेड़ की जैसा? ये परमेश्वर प्रभु यहां इस दृष्टांत में बता रहा है कि कलीसिया के शुरुआत अच्छा शुरुआत हुआ, और उस शुरुआत के मुताबिक एक छोटे झुंड ही आएंगे इस विश्वास में। लेकिन क्या हुआ? जाते जाते विश्वास बदल गया, और विश्वास बदलने के कारण से अभी एक दूसरे विश्वास में अभी बढ़ोतरी क्या हो गया? एक बड़ा पेड़। और पेड़ को क्या है? पेड़ को क्या बोलते हैं? ब्रांचेस को कलियां। हाँ, पेड़ को डालियां है, शाखा है। इसका मतलब क्या है? प्रभु बताता है कि कैसे कलीसिया के इतिहास में कलीसिया बड़ा हो जाएगा, लेकिन सच्चाई से नहीं, सच्चाई से नहीं, और बड़ा होकर शाखा छोड़ेगा। शाखा का मतलब है डिनोमिनेशन, और उस डिनोमिनेशन में आकाश के पंछी आके क्या करेंगे? बसेरा करेगा उसमें। तो आकाश के पंछी का मतलब क्या है? आकाश के पंछी का मतलब क्या है और बसेरा का मतलब क्या है? इसका मतलब है कलीसियाओं में आजकल दुनियादारी के लोग, दुनिया वाले लोग आके बसेरा कर रहा है। अच्छा अच्छा पद, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ऐसा ऐसा पद के लिए अंदर आके, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अंदर आके, ऐसा ऐसा बात हो रहा है। ये दुनियादारी वाले अभी कलीसिया के अंदर आ चुके हैं, यही बात तो बता रहा है। तो आजकल कलीसिया पवित्र कलीसिया नहीं है, आजकल बहुत सारे कलीसियाओं एक व्यापार की जैसा बदल गया है, व्यापार की जैसा। बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े फैसिलिटीज, बड़े बड़े लोग, भीड़, लेकिन सच्चाई के लिए कोई अहमियत देता ही नहीं। तो यही यहां प्रभु इस दृष्टांत में बता रहा है। ये पहला दृष्टांत ये है, पूरा सुसमाचार युग के इतिहास के बारे में बता रहा है कि ऐसी स्थिति होगा एक दूसरा दृष्टांत बताता है वो मत्ती 13वां अध्याय और अगले वचन 33वां वचन।
उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह खमीर हो गया।
ये दूसरा दृष्टांत यहां देखते हैं। दूसरे दृष्टांत में प्रभु बोलते हैं कि अभी परमेश्वर के राज्य ये एक औरत के समान है। ये औरत कौन है? ये अच्छा औरत नहीं है, क्योंकि ये औरत क्या करता है, थोड़ा खमीर लेता है और 3 पसेरे आटा में मिलाते हैं और 3 पसेरे आटा में मिलाते मिलाते जाते जाते पूरा आटा क्या होता है, खमीर सा होता है। इसका मतलब क्या है? ये एक और दृष्टांत जहां बताता है कि कलीसिया के इतिहास में क्या हुआ। एक पहले बात आप देखना है कि इस दृष्टांत में वो आदमी का बात ही नहीं है जिसने जिसने बीज लेके बोया। वो आदमी कौन था? प्रभु यीशु। अभी ये दृष्टांत में प्रभु यीशु का याद ही नहीं है, एक औरत है। बाइबल में औरत का मतलब है कलीसिया। ये एक अच्छा औरत नहीं है, ये बुरा औरत है, ये झूठा कलीसिया है। क्या लेता है? खमीर। खमीर का मतलब क्या है? जैसे आपने सुना पहला क्लास में, खमीर का मतलब है झूठा उपदेश, झूठा शिक्षा। ये तो मत्ती 16 अध्याय 11 वचन में पढ़ते हैं, मत्ती 16:11।
तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु ये कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना।
देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर, फरीसियों और सदूकियों का खमीर का मतलब फरीसियों और सदूकियों का उपदेश का शिक्षा, उनकी शिक्षा प्रेरितों के काम 23:8 में पढ़ते हैं। फरीसियों और सदूकियों का मानना क्या था? कि पुनरुत्थान नहीं है, स्वर्गदूतों नहीं है, तो ये सब झूठा शिक्षा। तो खमीर का मतलब है झूठा शिक्षा। ये औरत एक झूठा कलीसिया, जो जिनके बारे में हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में 17वां अध्याय में पढ़ते हैं, ये एक वेशी है। 17वां अध्याय 3रा वचन।
तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और उसके 7 सिर और 10 सिंह थे एक स्त्री को बैठे हुए देखा।
ये सब थोड़ा बड़े बड़े बातें हैं जो हम पढ़ लेंगे 35, 36 और 37वां क्लास, और आगे बहुत कुछ बढ़ना है, बहुत ज्यादा बढ़ना है ये बात को समझने के लिए। ये सब चिन्ह की भाषा है, ये भविष्यवाणी भाषा है, ये प्रकाशित वाक्य की भाषा है। लेकिन आज के लिए बस क्या है कि ये एक झूठा कलीसिया, और ये झूठा कलीसिया क्या करता है? खमीर लेता है। खमीर का मतलब है झूठा शिक्षा, और झूठा शिक्षा लेके 3 पसेरे आटा में मिलाते हैं। 3 पसेरे आटा, ये 3 पसेरे आटा क्या है? ये 3 पसेरे आटा एक मसीही का पिलर क्या कहता है,
खंबा।
ये मसीह का खंबा है, 3 खंबा जहां एक मसीह कड़ते हैं। वचन में पढ़ेंगे ये 3 खंबा क्या है। पहला कुरिन्थियों 13:13, पहला कुरिन्थियों 13:13। पहला करिंथियों 13।
पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थाई हैं, पर इनमें से बड़ा प्रेम है।
देखो, विश्वास, आशा, प्रेम, क्या है ये? विश्वास अति पवित्र विश्वास, वचन का विश्वास, परमेश्वर का योजना अति पवित्र विश्वास, परमेश्वर के वचन के आधारित विश्वास, अति पवित्र विश्वास। दूसरा आशा। आशा क्या है कि अभी अगर हम पूरे के पूरे मन से हम प्रभु के लिए हम चेले बन जाते हैं, हम प्रभु के कदमों के पीछे जाए, अपने अपने क्रूसों को हम उठाएं, हम मरने के बाद प्रभु के दूसरे आगमन में प्रभु के साथ राज्य करेंगे, यह है आशा। और इसलिए कि हम इतना सब जानकारी पाते हैं आशा के बारे में और विश्वास के बारे में, तो तीसरा चीज क्या है? प्रेम। जो आदमी पिता परमेश्वर से मिलते हैं, जो आदमी प्रभु यीशु से मिलते हैं, सच्चा प्रेम को समझते हैं। तो ये विश्वास, आशा, प्रेम। लेकिन ये औरत इन तीन में खमीर डाला, जूता शिक्षा। तो अति पवित्र विश्वास, परमेश्वर के वचन के विश्वास में इतने सारे जूता शिक्षा लाया कि परमेश्वर के सच्चाई नजर भी नहीं आ रहा। अभी जब सच्चाई नजर में नहीं आता तो नहीं जानता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है दुनिया में, नहीं जानता है कि बुराई की मतलब क्या है, नहीं जानता है कि पाप का मतलब क्या है, नहीं जानता है कि हम क्यों मरते हैं, नहीं जानता है कि मरने के बाद हमारा उम्मीद क्या है, नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है। अति पवित्र विश्वास में खमीर मिलाया। अगले आशा, परमेश्वर की किताब में आशा है कि अगर हम वफादार हो मरते दम तक, तब मरने के बाद पुनरुत्थान में हम प्रभु यीशु के साथ राज्य करेंगे। लेकिन क्या आ गया आशा? इस औरत क्या लाया? अभी ही परमेश्वर के नाम में हम अधिकार चलाएंगे। इसलिए अंधकार के युग से जब रोम में राज्य स्थापना कर रहे थे, जब अधिकार चला रहे थे, जिसके नाम है अंग्रेजी में द डार्क एजेस, अंधकार के युग, प्रभु के नाम में और परमेश्वर के नाम में राज्य कर रहे थे, अधिकार चला रहे थे। और अगर आशा चले जाते हैं और अगर विश्वास चले जाते हैं तो प्रेम किधर रहते हैं? परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु के प्रेम कैसे जान जाएंगे? जानने की बात ही नहीं है। इसलिए आजकल का प्रेम क्या है? स्वार्थी प्रेम, स्वार्थी प्रेम, दिव्य प्रेम चला गया है। तो ये है, ये दृष्टांत का मतलब है कि इतिहास में क्या हुआ कि सच्चा विश्वास, अति पवित्र विश्वास, सच्चा आशा और सच्चे प्रेम में खमीर मिलाया और धीरे धीरे पूरा का पूरा खमीर सा हुआ। तो आजकल का स्थिति क्या है? वचन में हम पढ़ते हैं यशाया 29:13, यशाया 29:13,
प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं।
देखो तो ये स्थिति अभी है। परमेश्वर कहता है कि गाने में बहुत अच्छे सुंदर से गाना गाते हैं मेरे बारे में, मेरे प्रशंसा के लिए, मेरे स्तुति के लिए, लेकिन उनके दिल हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो ये आज का स्थिति है, क्योंकि आजकल परमेश्वर के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर रहा है, परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए अहमियत नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी ये सब के बीच में, ऐसे सारे उलझनों के बीच में परमेश्वर चलाते हैं। जैसे देखो अभी बत्ती ही नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन फिर भी क्लास चल रहा है। ये सचमुच परमेश्वर का शक्ति है ना। अच्छा, शैतान सोच रहा है कि लाइटें बंद करेंगे, देखेंगे क्लास कैसे चलता है, लेकिन चल रहा है क्लास। अंत तक भी पहुंच गया है अभी कि नीति वचन चौथा अध्याय 18वां वचन चार 18
18 परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है।
देखो तो धर्मियों का चाल परमेश्वर हमेशा देखभाल करेगा, उसके राह में रोशनी लाएगा। यह परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, जरूर अपने लोगों के लिए रोशनी देंगे, जरूर देंगे और उसको चलाएंगे और अंत तक उसको रोशनी देके ही चलाएगा। तो आज हमने ये क्लास में देखा है कि अति पवित्र विश्वास जो परमेश्वर के वचन के आधारित विश्वास है, आजकल पूरे के पूरे कोशिश पर शैतान ने किया उसके उजाड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए। जैसे जैसे आज का क्लास भी देखो, करंट ही निकाला ताकि आप कुछ भी नहीं सुनना है, ये क्लास भी बंद होना है, लेकिन देखो परमेश्वर हमारे साथ है। तो इन अति पवित्र विश्वास के बारे में आने वाले क्लासों में बहुत सारे सच्चाई आप सुनने वाला है, बहुत सारे सच्चाई। और एक और बात आप याद में रखना, शैतान कोई काम नहीं कर सकता जो परमेश्वर अनुमति नहीं देता है। तो परमेश्वर आज अनुमति दिया, देखना है कि तुम्हारे में भी कितना जोश है, तुम्हारे में भी कितने जोश है इस सच्चाई के लिए, और मेरे लिए भी कितने जोश है सेवा करने के लिए। परमेश्वर की कृपा से हम ये क्लास खत्म किया। आने वाले दिन में आप बहुत सारे सच्चाई सुन लेंगे, परमेश्वर आपका साथ रहेंगे, परमेश्वर ही आपको आशीर्वाद करें। आमीन।